हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 6 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम उमर्थोमा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहम् न जाने करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि वस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्मादवेति बर्हापीडं नटवरवपोकर्णीयो कर्णिकार बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यं रन्ध्रान् वेणुर् अधरसुदया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत्कीर्तकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिङ्गासयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेन जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 3, जिसका शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। विदुर जी को अत्यंत ही सुंदर रीति से उद्धव जी भगवान की वृंदावन से बाहर की लीलाएं, जिसमें भगवान ने विभिन्न कन्याओं के साथ विवाह किया, जैसे रुक्मणी के साथ और नग्नजीती के साथ जिस तरह से विवाह किया उनके विषय में बताया। अब वो उस प्रसंग को याद कर रहे हैं जब भगवान नरकासुर की कैद में हजारों राजकुमारियां जो के वहाँ पर बंदी थी उनको भगवान किस तरह से छुड़ाते हैं और वो सब किस तरह से भगवान के अपने आप को भगवान के समर्पित करती हैं, उसके विषय में बहुत ही सुंदर उद्धव जी कहते हैं। सुतम हृदेखम वपुषा प्रसन्तम दृष्ट्वा सुनाभोन मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तात् तनयायशीशं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविवेश। सूतं हृदेकं वपुषा प्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन् मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत् तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तः पुरमाविशेष। सुतं मृदे, सुतं मतलब पुत्र को, मृदे मना युद्ध में, खम यानी आकाश, वपुषा ग्रसतम, वपुषा मतलब अपने शरीर से ग्रसतम यानी निगलते हुए, दृष्ट्वा सुनाभोन मथितं धरित्र्या। दृष्ट्वा मना देखकर, सुनाभ सुदर्शन चक्र से उन्मथितम अर्थात मार डाला, और धरित्र्या पृथ्वी द्वारा आमंत्रित प्रार्थना किए जाने पर तत्तनयाय नरकासुर के पुत्र को शेष उससे लिया हुआ, दित्वा वापस लौटा दिया, तत् उसके अंतपुरम घर के भीतर आविशेष, आविवेश या तब घुसने घुसे। अनुवाद, धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर को के घर में प्रविष्ट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य पुराणों में यह कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरती पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया था। नास्तिक को असुर कहा जाता है और यह एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता के उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ श्री प्रभुपाद जी नरकासुर की जन्म के विषय में कहते हैं कि जब भगवान ने वराह अवतार लिया था तो पृथ्वी देवी को जब उन्होंने अपने दांतों पर उठाया था, उसी समय नरकासुर जो है उसका जन्म जो है वो पृथ्वी देवी के द्वारा हुआ, और भगवान की संतान होते हुए भी, साक्षात भगवान की संतान होते हुए भी नरकासुर इतना बड़ा राक्षस बना, तो उसका कारण बताते हैं कि वो एक असुर की संगति कर रहा था और उस असुर की संगति के कारण उसका हृदय इतना मलिन हो गया कि वो भी राक्षस बन गया। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत खास बात बता रहे हैं कि अच्छे घर में पैदा हो जाना ही काफी नहीं है, जब तक कि जीव को अच्छी संगति करके, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, तब तक वो अच्छा इंसान तब तक नहीं कहलाता जब तक कि उसके कार्य भी अच्छे होने चाहिए, उसके संगति भी अच्छी। ऐसे बोलते हैं कि इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। भगवान से सदैव ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको और हमारी संतान को अच्छी संगति प्राप्त हो ताकि वो अच्छे बन सकें और भगवान की भक्ति कर सकें। आगे उद्धव जी कहते हैं, तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधु उत्थाय सद्यो जगृहु महर्ष रीडानुराग प्रहितावलोक तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कुजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधु उत्थाय सद्यो जगृहु महर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोक। शब्दात् तत्र हृतास्ता, तत्र यानी नरकासुर के घर के भीतर, आहृता उप अपहृत की हुई स्त्रियां, ता उन सबों को नरदेव कन्या अनेक राजाओं की पुत्रियों को कुजेन असुर द्वारा दृष्टा देखकर हरिम भगवान को आर्त बंधु वह भगवान जो दुखियारों के मित्र हैं उत्थाय उठकर सद्य वहीं पर तत्काल जगृहु स्वीकार किया प्रहर्ष हंसी खुशी के साथ वीरानुराग प्रहितावलोके। व्रीड अर्थात लज्जा, अनुराग अर्थात आसक्ति, प्रहित अवलोक उत्सुक चितवन से अनुवाद, उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकन्नी उठी। उन्होंने अति उत्सुकता हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था, किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संरक्षण से अपहरण कर लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी नहीं होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती हैं, क्योंकि ये कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहरित की जा चुकी थीं, अतः भगवान के अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव था। शिला प्रभुपाद की जय। तो ये भगवान की अनुकंपा है, चाहे वो कितना ही पतित जीव हो लेकिन यदि वो पूर्ण रूपेण भगवान को अपने आप समर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं, परंतु कोई सोच सकता है कि एक व्यक्ति, एक कृष्ण, 16,108 रानियों के साथ किस तरह से रहता था, क्या वो उनको किस तरह से रखता था और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करता था। एक ही व्यक्ति इतने सारे पत्नियों को समय कैसे दे सकता है। लेकिन भगवान तो अचिंत्य शक्ति के सागर हैं, वो प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक क्षण रहते हैं। तो उसके विषय में उद्धव जी कहते हैं, आसम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविदं जगृहे पाणिन् अनुरूपः स्वमायया। आसम मुहूर्त एकस्मिन् नानारागेषु योषितां सविदं जगृहे पाणिन् अनुरूप स्वमायया। आसम मुहूर्त, एक आसम मतलब सबों को, मुहूर्त मतलब एक ही समय, एकस्मिन एक साथ, नाना आगारेशु मतलब विभिन्न कमरों में, योषिताम उन स्त्रियों के, सविधम विधि पूर्वक, जगृहे पाणि अनुरूप, जगृहे मतलब स्वीकार किया, पाणीन मतलब हाथों को, अनुरूप उनके अनुरूप, स्वमायया अपनी अंतरंग शक्ति से। भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने प्रत्येक राजकुमारी के साथ अंतरंग शक्ति के द्वारा उनके साथ पाणी ग्रहण किया, विवाह किया और उनको बहुत ही सुंदर सुंदर भवन बना के दिए। उनमें हर एक पत्नी के साथ भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करके इस तरह से उनके साथ रहते थे। अनुवाद, वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई और भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी याद कराते हैं ब्रह्म संहिता 5.33 में भगवान उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषं नवयवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात, मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न हैं, वे अच्युत हैं, आदि हैं तथा असीम हैं एवं नित्य रूपों वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। आद्यं पुराण पुरुषं नवयवनं च। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से स्वयं प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्रभाव तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान के वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा अनुरूप, यानी जिस जिस समय जैसा स्वरूप की आवश्यकता होती है वैसे स्वरूप को धारण कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग राजकुमारियों के साथ भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करके अपने अलग अलग महलों में रहते थे। भगवान की संतानों के विषय में वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते हैं, तास्वपत्यान्य जनयादात् जनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृते विभुभूषया तास्वपत्यान जनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतिर्विभुभूषया। तास्व पत्यानि, तास्य मतलब उनके भगवान के, अपत्यानि मतलब संताने, अजनयत यानी उत्पन्न किए भगवान ने कितने कैसे संताने उत्पन्न किए, आत्मतुल्यानि यानी अपने ही समान, जितने सुंदर, जितने शक्तिशाली, जितने वैभवशाली कृष्ण खुद हैं वैसे ही उनकी संतानें उत्पन्न हैं। सर्वतः, सर्वतः मना सभी तरह से भगवान के जैसे थे। एक एकस्याम उनमें से हर एक यानी एक एक 16108 थी तो हर एक पत्नी में से दश दश दस दस प्रकृतिर विभूषया, प्रकृतिर मतलब अपना विस्तार करने के लिए, विभूभूषया ऐसी इच्छा करते हुए भगवान ने अपने विस्तार की इच्छा करते हुए प्रत्येक पत्नी से दश दश पुत्र अपने ही समान तेजस्वी उत्पन्न किए। अनुवाद, अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान में उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली दश दश संतानें उत्पन्न की। भगवान की अद्भुत लीलाओं के विषय में वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते हैं, काल मागदशाल्वादीन अनीकै रुंधतः पुरम अजीगनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। कालमागदशाल्वादीन अनीकै रुंधतः परम अजीगनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत। काल अर्थात काल्यवन, मागद अर्थात मगध के राजा जरासिन, काल मागदश शालिव अर्थात शाल्व राज्य, आदिन अर्थात इत्यादि, अनीकय सैनिकों से रुंधत गिरा हुआ, पुरम अर्थात मथुरापुरी, जब मथुरापुरी काल्यवन मगध के राजा जरासिन अर्थात शाल्व राजा के द्वारा गिरा हुआ था। अजीघनत स्वयं दिव्यम, अजीघनत मार डाला, स्वयं स्वयं दिव्यम दिव्य, स्वपुंसाम तेज आदि स्वपुंसाम अपने ही लोगों को तेज तेज आदिशु प्रकट किया। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं, कालीवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। स्वयं नहीं मारा यानी कि अपने भक्तों को यश प्रदान करने के लिए, श्रेय प्रदान करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसी लीलाएं करते हैं। तो भगवान ने स्वयं उनको नहीं मारा परंतु अपने भक्तों के द्वारा उनका वध करवाया। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी काल्यवन जरासिन तथा शाल्व जैसे सैनिकों द्वारा घेर ली गई तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले और इस तरह वे रण छोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग जाए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकंद तथा भीम जैसी भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल्यवन तथा मगध राज्य का वध क्रमशः मुष्कंद तथा भीम द्वारा किया गया था, जिन्होंने भगवान के प्रतिनिधि यानी एजेंट की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों को पराक्रम तेज को प्रदर्शित कराना चाहते थे, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों। किंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होते हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने का उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्रम भवसव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। श्रील प्रभुपाद की जय। ये भगवान करुणा के सागर हैं और भगवान को अपने यश में इतना आनंद नहीं आता जब उनके भक्तों को यश मिलता है। इसीलिए भगवान ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं कि वो उनके भक्तों को श्रेय मिले। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने बताया, क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध करना भगवान श्री कृष्ण के लिए असंभव था? वो तो एक सुदर्शन चक्र चलाते और प्रत्येक जितने भी कौरव दल में सैनिक थे, सेना नायक थे, प्रत्येक का संहार हो जाता। लेकिन भगवान ये श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते थे। उसी तरह से भगवान बहुत सारे अवसर पर अपने यश को कम करके भी अपने भक्तों का यश बढ़ाते हैं। जैसे काल्यवन जब आक्रमण कर रहे थे उस समय भगवान भाग गए। हालांकि युद्ध में भागना, अर्जुन को भगवान कहते हैं, देखो अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे ना तो सब तुम्हारी तुम्हारे लिए हानि की बात करेंगे कि देखो कैसा ये वीर है, ये युद्ध से भाग गया, सब तुम्हारे लिए ऐसी बातें करेंगे। और स्वयं काल्यवन से युद्ध के समय पे भागकर रणछोड़ राय नाम उनका पड़ा। तो भगवान चाहे कुछ भी करें वो तो सदैव भगवान रहते हैं। और वो भगवान का मतलब ये है कि वो अगर कोई निंदनीय कार्य भी करें तो उसमें भी उनका यश हो, है ना। आज हम देखते हैं कि भगवान चोरी करते माखन की और हम माखन चोर कहकर उनकी पूजा करते हैं। भगवान रण छोड़ के चले जाते हैं और हम रण छोड़ राय बोलकर उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कुछ भी करते हैं तो वो भगवान ही रहते हैं और अपने भक्तों को यश प्रदान करने के लिए, जैसे माधवेंद्रपुरी को यश प्रदान करने के लिए वो आज भी खीर की चोरी करके खीर चोर गोपीनाथ अपना नाम कहलवाते हैं। तो भगवान अद्भुत लीलाएं केवल भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और अपने प्रेम को उनके सामने प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं, शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलवलमेव च अन्यंश दंत वक्रादीन अवदीत कांश्च घातयत् शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलवलमेव च अन्यंश दंत वक्रादीन अवदीत कांश्च घातयत्। ये सब असुरों के नाम हैं। शंबर शंबरासुर, द्विविध द्विदम अर्थात द्विविध, बाणम बाण, मुरम मुर, बल्यवलम बल वल्लम अर्थात बलबल, एवच, ये सारे जो असुर थे, अज्ञान, अन्य भी बहुत सारे असुर जैसे दंत वक्र आदि अर्थात दंत वक्र इत्यादि को अवधीत मारा, कांश तथा अनेक अन्यों को घातयत मरवाया, कुछ को तो खुद मारा और कुछ को अपने भक्तों के द्वारा मरवाया। शंबर द्विविध बाण मोर बल्यवल जैसे राजाओं तथा दंत वक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों तथा यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। आगे कहते हैं कि वो तो पृथ्वी का भार कम करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, इसलिए उन्होंने सारे असुरों को और सारे कुरुओं को भी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मरवा डाला। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितान रिपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम ये शामा पततां बलै। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयो पतितान रिपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम ये शामा पततां बलै। अथ ते भ्रातृपुत्राणां, अथ ते, अथ यानी तत्पश्चात, ते तुम्हारे, भ्रातृपुत्राणां यानी भतीजे, विदुर जी के भतीजे कौन है, धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडव के पुत्र, क्योंकि धृतराष्ट्र और विदुर और पांडव सब वेद व्यास जी के पुत्र थे, तो उनके भतीजों पक्षे, दोनों पक्षों में पतितानाम अर्थात मारे गए नृप राजाओं को, ऐसे राजा थे। चचाल भू कुरुक्षेत्रम, चचाल हिल जाती थी भू यानी पृथ्वी, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, येषां आपततां बलै, येषां मतलब जब ये राजा लोग आपततां अर्थात चलते समय बलै यानी उनके अंदर इतना बल था कि जब वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर चलते थे तो भूमि हिलने लगती थी। अनुवाद, तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते थे तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती थी। उद्धव जी उस युद्ध में जो हुआ उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, सकर्ण दुशासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमूर्याम ननंदम पश्यम। सकर्ण दुशासन सौबलानां कुमंत्र पाकेन हत श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमूर्यान नन्नंद पश्यन। स कर्ण दुशासन सौबलानाम, स मना वह भगवान, कर्ण करण, दुशासन दुशासन, सौबलानाम यानी सौबल, कुमंत्र पाकेन कुमंत्रणा की जटिलता से उन सब ने दुर्योधन को कुमंत्रणा दी, अच्छी सलाह नहीं दी, हितश्रीय जिसके कारण दुर्योधन ने अपनी संपत्ति यानी हित और श्रेय से विहीन हो गया, आयु यानी अपनी आयु से, सुयोधनम दुर्योधन, सानुचरम शयानम, स अनुचरम यानी अनुयायों सहित, शयानम अर्थात लेटे हुए, कैसे, भग्नो रुमूर्ध्याम, भग्नो यानी टूटी हुई, उरुम यानी जांग, ओरव्याम अत्यंत शक्तिशाली था फिर भी उनको, उन अपने मित्रों की कुमंत्रा के कारण आज उसकी जांगें टूटी हुई थी, और न आनंदम पश्यन, न मतलब नहीं, आनंदम मतलब आनंद मिला, पश्यन मतलब इस तरह देखते हुए, भगवान को कोई खुशी नहीं होती है जब किसी दुराचारी को भी कष्ट मिलता है तो भगवान को खुशी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के सब अंश हैं और भगवान सबको सुरक्षित और आनंदित देखना चाहते हैं, लेकिन भक्त लेकिन ये जीव इस बात को मानता नहीं है कि उसका आनंद, उसकी शांति, उसका सुख केवल भगवान की आज्ञा और उपदेश का पालन करने पर है। दुर्योधन को भी भगवान ने बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं माना, जिसके कारण आज उसको इतना दुख भोगना पड़ रहा था। अनुवाद: कर्ण, दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था, उनकी जांघें टूटी हुई थी। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन की जांघें किस तरह से तोड़े, भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते हैं न आनंदम, क्योंकि सारे जीव मूलतः उनके भिन्नांश होते हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति वज्र से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कोमल रहते हैं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है। जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन ना करना है। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित किए गए हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। हमको कितना आश्चर्य होता है कि दुर्योधन भगवान की बात नहीं मान रहा था, और सबको ये भी लगता है कि वो भगवान की बात नहीं मान रहा था तो निश्चित रूप से उसकी हार होना ही था, उसको हारना ही था, उसको मरना ही था। लेकिन आज भी जीव क्या कर रहा है अगर देखा जाए तो, भगवान ने अपना आदेश छोड़ दिया गीता में और कहा कि यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारात् न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम। यदि आप मेरे इस शास्त्र की बात नहीं मानोगे तो ना तुम्हें सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी और न परम गति मिलेगी। फिर भी जीव भगवान की बातों का उल्लंघन करता है, वो खाता है जो भगवान नहीं चाहते, वैसे जीता है जैसे भगवान नहीं चाहते, तो निश्चित रूप से उनका पतन होना स्वाभाविक ही है। और आगे भगवान ने किस तरह से यदुवंशियों का सर्वनाश कराया उसके विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि यान भूयम् क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलय अष्टादशाक्षो हिणिको मदंशय हस्ते बलम दुर्विषहम यदूना कियान् भूयम् क्षिपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलय अष्टादशाक्षो हिणिको मदंशय अस्ते बलम दुर्विषहम यदूना। कियान यह किया है, भुवः पृथ्वी पर, अयम यह क्षिप्त अर्थात घटा हुआ, उरु बहुत बड़ा, भार यानी भार, द्रोण भीष्म यानी भीष्म पितामह अर्जुन भीम मूलय सहायता से अष्टादशाक्षो हिणी को मदन। अष्टादश यानी 18,000 अक्षौणिक मतलब सैनिक का व्यूह रचना लगभग। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके बारे में आपको श्रीमद् भागवतम में 1.16.34 में डिटेल से मिलेगा। मत अंशे मेरे वंशजों के साथ आस्ते अब भी है, बलम यानी महान शक्ति दुर्विषहम असहाय यदुनाम यदुवंशियों की। अनुवाद, कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण भीष्म अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौणी सेना का पृथ्वी का भारी भोजा कम हो गया है, किंतु यह क्या है, अब भी मोजी से उत्पन्न यदुवंशों की विशाल शक्ति शेष है जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। कहते हैं आस्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम, मैं आया हूँ संसार की बोझ को कम करने के लिए, लेकिन मेरे ही साथ से जो यदुवंशी उत्पन्न हुए हैं, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र, उनकी संतानें और इतना बड़ा यदुकुल, तो भगवान बोलते हैं ये तो और भी असह्य है और वो बड़ा बोझ बन गए हैं। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अति बोझल होता है और इसीलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी कभी भी अति बोझल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुतम पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की उपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी भी अति भोजन नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निमित्तर पशुओं थलचरों जलचरों पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों की उपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भाड़ बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता। पृथ्वी धर्म ग्लानी अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अति भोजल हो गई थी। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, ना कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि सारी अर्थशास्त्रियों द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनकी यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है और भगवान ने अनेक भरण उनके वरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं कि चाहे जितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए उससे पृथ्वी जो है वो भोजन नहीं होती है, पृथ्वी को भार नहीं लगता है, बल्कि दुख तो पृथ्वी को भार तो तब लगता है जब जीव भगवान की आज्ञाओं का उपदेश का पालन नहीं करता। तो भगवान ने प्रत्येक जीव के लिए पर्याप्त रूप में खान पान की व्यवस्था की है और इस भौतिक जगत में अगर देखा जाए, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्यों की तो संख्या 5% भी नहीं है, बाकी जितने भी जीव हैं तो और भी ज़्यादा हैं, लेकिन भगवान सब के लिए व्यवस्था करते हैं। और भगवान पुनः पुनः सृष्टि क्यों करते हैं? ताकि भगवान जीव को बार बार यह अवसर प्रदान करते हैं कि वो भगवत धाम की ओर आगे बढ़े, क्योंकि जब तक जीव भगवत धाम नहीं चला जाता तब तक वो कभी भी आनंदित नहीं रह सकता, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जीव को इसी जन्म में भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों न हो, यदि लोग ईर्ष्या भावना अमृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं है, तो पृथ्वी का यह भार उसके लिए आनंद का स्रोत है। भार दो प्रकार के होते हैं, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य है, किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रेम भार का अत्यंत ही व्यावहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुणता की दृष्टि से वास्तव में भार हैं, किंतु ये आनंद के स्तोत्र हैं और ऐसी भोजल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार की उपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की, तो उन्होंने पशु भार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु ये वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे। अतएव पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया, तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन लोप का भाव था। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया, तो वे उनके विछोह भार का ही संकेत कर रहे थे। श्रीला जीव गोस्वामी ने इन निष्कर्ष की पुष्टि की है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, जो कि जीव गोस्वामी जी ने अपने शास्त्र में बताई है कि भगवान के स्वांश पैदा हुए। जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जितने भी पुत्र थे वो भगवान के ही जैसे लगते थे, भगवान के जैसा स्वरूप था, भगवान के जैसा तेज था। तो इससे पृथ्वी के लिए ये भारी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर बताया, भार दो तरह के होते हैं, एक तो पशु भार होता है, दूसरा प्रेम भार होता है। और प्रेम भार कैसा होता है? युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार। तो ये जब होते हैं तो आनंद आता है, और जब विछोह होता है तो दुख होता है। तो ये पृथ्वी पर जब तक पृथ्वी पर जब तक यदुवंशी थे तब तक पृथ्वी आनंदित थी, लेकिन ये क्योंकि भगवान के ही अंश थे, भगवान के ही पार्षद थे या कुछ देवता गण थे, तो उन्हें भगवान के साथ ही वापस जाना ही था। तो भगवान को कोई तो लीला करनी थी। और दूसरा ये कि जब भगवान बाहर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उनके विछोह का बार। जब वो जाएंगे तो निश्चित रूप से भगवान और भगवान के प्रतिनिधि जब भौतिक जगत से जाएंगे तो हम सबके लिए दुख का ही कारण बनेगा। तो इस तरह से भगवान ने उन यदुवंशियों को इस पृथ्वी से पुनः अपने धाम में भेजने की तैयारी की। वे भगवान कहते हैं, मिथो यदेशां भविता विवादो मध्वा मदाता मृवीलोचनाना नैषां वधोपाय इय नतोन्यो मायुध्यतेऽन्तर् ददते स्वयं स्मा मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदाता म्रविलोचनानां नैषां वदोपाय इया नतोन्यो मयुद्यतेऽन्तर्ददते स्वयं स्मा मिथो यदेशम भविता विवादो मिथो मतलब परस्पर यदे जब एशाम उनके भविता होगा विवाद यानी झगड़ा क्योंकि इनके साथ और को तो और तो कोई युद्ध कर नहीं सकता जी जब आपस में झगड़ा करेंगे और आपस में क्यों करेंगे मध्वा मदाता म्रवीलोश मध आदम आमद मतलब मधु आमद अर्थात शराब पीने से उत्पन्न नशा आताम्र विलोचनान यानी तांबे जैसी लाल लाल आंखें न ऐशाम न मना नहीं ऐशाम मतलब इनके वध उपाय लोभ का साधन इसके अलावा और कोई साधन नहीं है उनके लोभ का इन यान यानी इन जैसा अतः इसके अतिरिक्त अन्य यानी वैकल्पिक मय यानी मुझ पर उद्यते लोप अंतदते विलुप्त होंगे स्वयं अपने से स्म निश्चय ही अनुवाद जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे जगरेंगे तभी वे लुप्त होंगे अन्यथा यह संभव नहीं होगा मेरे अंतर्ध्यान होने पर यह घटना घटेगी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तथा उनके संगी भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं भगवान के परिवार का वध कर सके सकने में कोई भी समर्थ ना था ना ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि ना वो कभी बीमार होंगे ना ही वो स्वाभाविक उनकी मृत्यु होगी क्योंकि वो भगवान के ही तरह शक्तिशाली थे तो भगवान जिस तरह से अपनी मर्जी से जाते हैं तो भगवान के जितने भी संगी हैं वो भगवान की इच्छा से जाएंगे तो यहाँ बता रहे हैं कि किसी के अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वो उनको मार सके ना ही उनकी स्वाभाविक मृत्यु इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर छद्म युद्ध करें मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों यह तथाकथित युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो सकता था अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे भगवत गीता कही गई थी उसी तरह यदुवंश को भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था इससे अधिक कुछ नहीं है भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं हैं अतएव वे भगवान के हाथों में दिव्य साधन है और भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग हो सकता है शुद्ध भक्त भी भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं क्योंकि वे भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल नहीं देते उल्टे वे अपनी व्यक्तिकता का उपयोग भगवान की इच्छाओं की पूरी करने में करते हैं भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग भगवान की लीलाओं की को पूर्णता प्रदान करता है श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से होता है और भक्त और भगवान का परस्पर ये डील होती है कि भक्त चाहता है कि भगवान आप जैसे चाहे मुझे यूज़ कीजिए और भगवान बहुत आनंदित होते हैं भक्तों की इच्छा को पूरा करके और भक्त बहुत आनंदित होते हैं भगवान की इच्छा पर पूरी करके तो ये तो परस्पर उनका चलता है क्योंकि भक्त और भगवान सदैव एक दूसरे को प्रसन्न देखना चाहते हैं उद्धव जी कहते हैं एवं सचिंत्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृद साधूनां वर्त्म दर्शयन् एवं संचित्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृद साधूनां वर्त्म दर्शयन् एवं संचित्य भगवान्। एवं इस प्रकार संचित्य अपने मन में सोचकर भगवान भगवान ने स्वराज्य अपने राज्य में स्थापित करके धर्मजम महाराजा युधिष्ठिर को नंदयाम आस हर्षित किया, सुहृद मित्रों गुणों साधु नाम संतों के वर्त्म दर्शयन मार्ग दर्शन यानी दिखाते हुए। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। श्रील प्रभुपाद की जय। कि भगवान ने समस्त कौरवों और यदुवंशियों का विनाश करने के उपरांत पूरी पृथ्वी का राज्य जो है वो युधिष्ठिर महाराज को उस राज्य के लिए स्थापित किया, महाराज युधिष्ठिर को उस पद पर बिठाया। उसके उपरांत उत्तरायाम धृत प्रो पूरो वंश साध्वाभिमन्युना सवै द्रोण्यस्त्र संलुष्टः पुनर्भगवता धृतः उत्तरायां धृतः पूरो वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र समलुष्टः पुनर्भगवता धृतः उत्तरायां धृतः पुरो उत्तरायाम उत्तरा के धृत स्थापित पुरो यानी पूर्व का वंश यानी उत्तराधिकारी साधु अभिमन्युना वीर अभिमन्यु द्वारा सह वै निश्चय ही द्रोणस्त्र द्रोण के पुत्र द्रोणी के हथियार द्वारा समलुष्ट जलाया जाकर पुनः दोबारा भगवता धृत अर्थात भगवान द्वारा धृत यानी बचाया गया। अनुवाद महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूण अवस्था में था तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा चला गया। यह घटना इसका प्रत्यक्षण प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक सफुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के स्त्रावों का मिश्रण होता है जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है, किंतु यदि किसी तरह से यह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया था कोई सामान्य जीव ना था और भगवान की महत्ती इच्छा से
उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने स्वांश से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकट ग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रविष्ट हुए। भगवान के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्ति से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। पुरुवंश का अंतिम दीपक परीक्षित महाराज जो कि उत्तराज के गर्भ में था, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उसको विनाश करना चाहते थे, लेकिन जिसे भगवान बचाना चाहता है उसे भला कौन मार सकता है। भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसे दोबारा नया जीवन दिया। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि यह घटना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक सहूलित भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य से प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है तो पुरुष तथा स्त्री के स्त्रावों का मिश्रण होता है जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, धीरे धीरे शरीर विकसित होता है। किंतु यदि किसी तरह से यह भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। तो वो जीव कभी नष्ट नहीं होता, वो वही रहता है क्योंकि उसे संसार में आना है। लेकिन ये अपराध हो जाता है किसी जीव के साथ यदि वो विनष्ट हो जाता है, परंतु जीव तो दोबारा से किसी न किसी का सहारा लेकर इस धरती पर पुनः आता है। लेकिन जो आत्मा उत्तरा जी के घर में थी वो कोई सामान्य नहीं थी, वो पांडवों का वंश बनने के लिए चुनी गई थी। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के वंश को बचाने के लिए स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और बचा लिया। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान उस शिशु को यानी परीक्षित महाराज को प्रोत्साहित करना चाहते थे कि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने मेरी शरण ग्रहण की थी तो मैं कभी भी तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेते हैं तो चाहे कितनी ही विकट स्थिति आती है भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जो हित में है वही करते हैं, हमारे कल्याण का ही करते हैं। क्योंकि भगवान की शरण में आने के बाद जीव निश्चिंत हो जाता है कि भगवान अवश्य हमारी सुरक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।